क्लिक ध्वनिया प्राय ध्वनियों के उच्चारण में निश्वास वायु मुख विवर से बाहर निकला करती है, परंतु संसार में कुछ ऐसी भी भाषाएं हैं जिनकी ध्वनियों के उच्चारण में निश्वास वायु को भीतर की ओर खींचा जाता है। इन ध्वनियों को क्लिक ध्वनिया कहते हैं। दक्षिण अफ्रीका के बुशमैन परिवार की भाषाएं क्लिक ध्वनि प्रधान हैं। हिंदी में भी क्लिक ध्वनियाँ पर्याप्त मात्रा में मिलती है। जब किसी व्यक्ति के पैर में अचानक कांटा गड़ जाता है तब मुख से जो सी सी की ध्वनि निकलती है, अथवा किसी मर्म स्पर्शित दुर्घटना के हो जाने पर या किसी व्यक्ति की दर्दनाक कथा सुनने पर जो अनायास ध्वनि निकल पड़ती है, अथवा कोई बैलगाड़ी हाँकने वाला या तांगा चलाने वाला व्यक्ति क्रमशः बैल या घोड़े को हाँकते समय कचक ध्वनि करता है, या किसी कुत्ते को घर से निकालते समय हम अनायास क्वैटो क्वैटो ध्वनि किया करते हैं, ये सभी क्लिक ध्वनियाँ कहलाती हैं। कुछ विद्वानों का विचार है कि सभी ध्वनियों का क्लिक उच्चारण हो सकता है। यह विचार किसी सीमा तक ठीक भी है, क्योंकि एक दो ध्वनियों को छोड़कर अन्य सभी ध्वनियों का क्लिक उच्चारण होना सर्वथा संभव है। संपूर्ण स्पर्श ध्वनियों का यदि क्लिक उच्चारण किया जाए तो स्पर्श बिंदु तो साधारण ध्वनि का ही रहेगा, किंतु इन दोनों ध्वनियों के उच्चारण में इतना ही अंतर हो जाएगा कि साधारण स्पर्श ध्वनि के उच्चारण में तो मुख विवर के अंदर से आती हुई निश्वास वायु पहले स्पर्श बिंदु पर रुकती है और फिर इसका स्फोट बाहर की ओर होता है, जबकि क्लिक उच्चारण में बाहर से आने वाली वायु स्पर्श बिंदु पर रुकेगी और तत्पश्चात उसका स्फोट बाहर की ओर होगा। अतएव इन क्लिक ध्वनियों का उच्चारण साधारण स्पर्श ध्वनि की भांति स्वेच्छा से उच्च स्वर में नहीं किया जा सकता। भाषा वैज्ञानिकों ने क्लिक ध्वनियों का वर्गीकरण भी किया है। अफ्रीका के बुशमैन परिवार की भाषाओं में जो क्लिक ध्वनियाँ मिलती हैं उनके विविध भेद बतलाए गए हैं, जिनमें से 5 भेद प्रमुख हैं: मूर्धन्य, तालव्य, पार्श्विक, दंत्य और ओष्ठ। इस प्रकार क्लिक ध्वनियों का भी पर्याप्त मात्रा में वर्गीकरण एवं विश्लेषण किया गया है। संयुक्त ध्वनियाँ। जब दो ध्वनियों के संयोग से एक दूसरी ध्वनि निर्मित होती है तब उसे संयुक्त ध्वनि कहते हैं। ये संयुक्त ध्वनियाँ दो प्रकार की होती हैं: संयुक्त स्वर ध्वनि और संयुक्त व्यंजन ध्वनि। पहला, संयुक्त स्वर ध्वनि। जब दो स्वर परस्पर मिलकर एक तीसरी स्वर ध्वनि को जन्म देते हैं तब उसे संयुक्त स्वर ध्वनि कहते हैं। संयुक्त स्वर के उच्चारण में प्रायः यह होता है कि दो या दो से अधिक स्वर एक झटके में बोले जाते हैं और उनके परस्पर संयोग से संयुक्त स्वर का निर्माण हो जाता है। जैसे अ और इ के संयोग से ए स्वर बन जाता है और अ और उ के संयोग से ओ स्वर बन जाता है। अतः संस्कृत भाषा में ए और ओ संयुक्त स्वर कहलाते हैं, जबकि हिंदी भाषा में इन्हें समानाक्षर या असंयुक्त स्वर ही माना जाता है। परंतु हिंदी में ए और औ को संयुक्त स्वर माना जाता है, क्योंकि यहाँ आ और ए तथा आ और औ के संयोग से इन स्वरों का उच्चारण क्रमशः ए और औ होता है, जैसे ऐसा और आदि। दूसरा, संयुक्त व्यंजन ध्वनि। जब दो या दो से अधिक व्यंजन स्वर रहित होकर किसी स्वर युक्त व्यंजन से मिलते हैं तब संयुक्त व्यंजन ध्वनि का जन्म होता है। संयुक्त व्यंजन ध्वनियाँ प्रायः दो प्रकार की होती हैं, एक तो वे जहाँ दो समान व्यंजनों का संयोग होता है, जैसे पत्ता शब्द में तू और तो का संयोग हुआ है और ये दोनों एक ही हैं। दूसरी, वे संयुक्त ध्वनि व्यंजन ध्वनियाँ होती हैं जहाँ दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न व्यंजनों का संयोग होता है, जैसे छ, त्र और ज्ञ ध्वनियों में क्रमशः क और प, त और र तथा ज और इय व्यंजनों का संयोग हुआ है। परंतु ये दो व्यंजनों के संयोग वाली ध्वनियाँ हैं, कहीं कहीं तो दो से अधिक व्यंजनों का भी संयोग होता है, जैसे वर्ड्स, यहाँ र, त, स और य के संयोग से वर्ड्स ध्वनि निर्मित हुई है। इन संयुक्त व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में होता यह है कि सर्वप्रथम निश्वास वायु स्वरयंत्र से निकलती है और फिर जब वह स्पर्श बिंदु पर आकर रुकती है तब वह साधारण व्यंजन के उच्चारण की अपेक्षा कुछ अधिक समय तक रुकी रहती है और इसके उपरांत वह स्पर्श बिंदु से आगे बढ़ जाती है। मानक स्वर। ध्वनि विज्ञान के मर्मज्ञ प्रोफेसर डेनियल जोन्स ने विविध भाषाओं का गहन अनुशीलन करने के उपरांत कुछ प्रधान स्वर स्थिर किए हैं जो मानक स्वर कहलाते हैं। इन्हें कुछ विद्वान प्रधान स्वर, कुछ विद्वान मान स्वर और कुछ मेय स्वर भी कहते हैं। ये स्वर संसार की सभी भाषाओं में पाए जाते हैं किंतु किसी एक भाषा विशेष में ये नहीं मिलते। इनका निर्धारण मुख्य समृत तथा विवृत और जिह्वा के मध्य अग्र और पश्चिम भाग के उठने के आधार पर किया जाता है। ये मानक स्वर 8 माने गए हैं जिनमें से 4 अग्र स्वर और 4 पश्च स्वर होते हैं। पहला अग्र स्वर अ, ए, ए और ई, ये 4 अग्र स्वर होते हैं जिनमें से अ विवृत, ए अर्धविवृत, ए अर्धविवृत और ई समृत स्वर होता है। दूसरा पश्च स्वर आ, उ, उ और उ, ये 4 पश्च स्वर होते हैं जिनमें से आ विवृत, ओ अर्धविवृत, उ अर्धसमृत और उ समृत स्वर होता है। अ आ रेखा जिह्वा के स्वाभाविक स्थिति के द्योतक है जिससे उच्चारण के समय जिह्वा अत्यंत नीची अवस्था में रहती है। ई उ रेखा जिह्वा की सबसे ऊंची अवस्था के द्योतक हैं। इसे उच्चारण की सर्वोच्च सीमा कह सकते हैं क्योंकि इसमें जरा से ऊंची आवाज में यदि कोई ध्वनि उत्पन्न होगी तो उसे स्वर नहीं कह सकते। और जिह्वा के मध्य स्थिति का द्योतक है अ ई की आड़ी रेखा अग्र स्वरों के द्योतक है। आ उ रेखा पश्च स्वरों के परिचायक है। इस प्रकार समस्त मानक स्वरों के उच्चारण की स्थिति का भली प्रकार बोध हो सकता है। ध्वनि गुण। प्रत्येक व्यक्ति नित्य प्रति बोलने में जिन ध्वनियों का प्रयोग करता है उनमें कुछ ऐसे सामान्य गुण होते हैं जिनका जानना अत्यंत आवश्यक होता है क्योंकि किसी ध्वनि के उच्चारण में कम समय लगता है, किसी के उच्चारण में अधिक कोई ध्वनि अधिक बलपूर्वक बोली जाती है और कोई कम बलपूर्वक, कोई ध्वनि ऊंची बोली जाती है कोई नीची, और किसी ध्वनि का उच्चारण द्रुत गति से किया जाता है तथा किसी का मध्यम या विलंबित गति से। ध्वनि की इन सभी विशेषताओं को ध्वनि गुण कहते हैं। ये ध्वनि गुण 4 माने गए हैं, मात्रा, स्वर, आघात और वृत्ति। पहला मात्रा। किसी ध्वनि के उच्चारण में जो समय का अंश लगता है उसे मात्रा कहते हैं। मात्रा के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। 1 मात्रा को ह्रस्व, 2 मात्रा को दीर्घ और 3 मात्रा को प्लुत कहते हैं। प्रायः ह्रस्व से दुगुना समय दीर्घ में लगता है और ह्रस्व से तिगुना समय प्लुत में लगता है। वैसे यह ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत संबंधी मात्रा भेद बड़ा स्थूल है क्योंकि मात्रा का कोई निश्चित मान नहीं है और बहुत सी ऐसी ध्वनियाँ जो प्रायः दीर्घ मानी जाती हैं कभी कभी उनका उच्चारण ह्रस्व की ही तरह होता है। कविता में तो प्रायः ऐसा होता है, कभी दीर्घ को ह्रस्व और ह्रस्व को दीर्घ मान लिया जाता है। जैसे अवधेश के बालक, अवधेश के द्वार सकार गई सुत भूपति गूंद के लिए लय निकले, इस पंक्ति में 24 वर्णों का क्रम इस प्रकार रखा गया है कि 8 सगण अर्थात 2 ह्रस्व और 1 दीर्घ के क्रम में आने चाहिए। इस दृष्टि से विचार करने पर इस सवैया का क्रम यह रहेगा। अवधे सखद्वा रसका रगई सूतभ पतिगो दकलय निकसे। अतः छंद शास्त्र की दृष्टि से के द्वारे में से 3 दीर्घ स्वरों में से के रे का ह्रस्व की तरह उच्चारण करना पड़ेगा। गोद दकैले में से के को दीर्घ होते हुए भी ह्रस्व की तरह बोलना पड़ेगा, तब कहीं छंद शुद्ध एवं ठीक ठीक मात्रा वाला माना जाएगा। इस तरह ह्रस्व के वे वर्ण कहलाते हैं जो लघु होते हैं, जैसे क, गी, घु, च आदि, अर्थात ह्रस्व अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और अर्धचंद्राकार वाले वर्ण ह्रस्व मात्रा वाले होते हैं। दीर्घ वर्ण वे होते हैं जो गुरु होते हैं अर्थात आ, ई, ऊ, ओ, औ, अं या इनकी मात्रा में युक्त व्यंजन का, की, कु, को, कौ, कं आदि सभी वर्ण दीर्घ मात्रा वाले होते हैं। छंद शास्त्र की दृष्टि से तो प्रत्येक संयुक्त अक्षर से पूर्व का वर्ण भी दीर्घ होता है, जैसे अनुरक्त, प्रसन्न, विहंगम और उर्वर शब्दों में से र, स, ह और उ ह्रस्व होते हुए भी दीर्घ हैं, क्योंकि इनमें से प्रत्येक के आगे क्रमशः अक्त, न, ङ और र्व संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग हुआ है। ह्रस्व और दीर्घ के उपरांत प्लुत में तीन मात्राएं होती हैं। प्रायः जब कोई व्यक्ति दूर खड़े हुए व्यक्ति को पुकारता है तब वहां प्लुत मात्रा का उच्चारण होता है, जैसे कोई यदि दूर खड़े हुए राम को बुलाए तो वह इस प्रकार बोलेगा, अरे ओ रामा, यहाँ रामा में प्लुत मात्रा का प्रयोग हुआ है। अब भक्त लोग ओम का उच्चारण करते हैं तो ओ के स्थान पर प्लुत मात्रा का प्रयोग करते हैं, ओम। यहाँ प्लुत मात्रा का जो प्रयोग हुआ है उसे तीन के अंक द्वारा भी व्यक्त किया जाता है, क्योंकि प्लुत में तीन मात्राएं होती हैं, जैसे राम, ओम आदि। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत उच्चारणों में जिस प्रकार क्रमशः एक, दो और तीन मात्राओं का प्रयोग होता है, उसी प्रकार आदि और चौथाई मात्रा का प्रयोग भी उच्चारण में देखा जाता है। जैसे व्यक्ति शब्द में व और क ध्वनि का उच्चारण आधा ही होता है। इस दृष्टि से जिस व्यंजन का उच्चारण स्वर रहित किया जाता है वह आदि मात्रा का होता है। अतः काव्य, धन्य, मर्म और भोग्य शब्दों में क्रमशः व, न, र और ग ध्वनियों के उच्चारण स्पष्टतः आदि वाले हैं। कहीं कहीं चौथाई मात्रा का भी प्रयोग देखा जाता है, जैसे पगली, पगली हाँ संभाल ले कैसे छूट पड़ा तेरा अंचल पंक्ति में संभाल शब्द के अंतर्गत म ध्वनि का उच्चारण अर्ध न होकर चौथाई मात्रा का है। इस प्रकार चौथाई, आदि, एक, दो और तीन मात्राओं के द्वारा विविध ध्वनियों का उच्चारण किया जाता है। इस प्रकार मात्रा को ध्वनि का विशिष्ट गुण माना जाता है। दूसरा, स्वर। भाषाओं में ध्वनि का उच्चारण स्वर के आधार पर ही किया जाता है। स्वर से तात्पर्य स्वर तंतियों से उत्पन्न उस सुर या आवाज से है जो कभी नीची, कभी ऊंची और कभी सम सुनाई पड़ती है, तथा जो स्वर तंत्रियों के तनाव पर निर्भर होती है, क्योंकि उच्चारण के समय स्वर तंत्रियों में जब अधिक तनाव होता है तब उच्च स्वर निकलता है, कम तनाव होता है तब निम्न स्वर निकलता है और मध्यम तनाव होता है तब सम या मध्यम स्वर निकलता है। इस दृष्टि से विचार करने पर ज्ञात होता है कि स्वर तीन होते हैं, उच्च, निम्न और सम। इनको ही संस्कृत व्याकरण में क्रमशः उद्दात, अनुदात और स्वरित कहा जाता है। इसमें से ऊंचे स्वर को दात कहते हैं, नीचे स्वर को अनुदात कहते हैं और उद्दात एवं अनुदात जिस स्वर में सम्मिलित हों उसे स्वरित कहते हैं। इनमें से तालु आदि स्थानों के ऊर्ध्व भागों में उच्चारित स्वरों को उद्दात स्वर कहते हैं। तालु आदि स्थानों के अधोभाग में उच्चरित स्वरों को अनुदात स्वर कहते हैं और सम स्वरों को स्वरित कहा जाता है। इन स्वरों की महत्ता वैदिक युग में अत्यधिक थी। वेदों के सभी मंत्रों का उच्चारण स्वरों के आधार पर ही किया जाता है और स्वरों के प्रयोग से ही वेदों के शब्दों का अर्थ भी परिवर्तित हो जाता है। इन स्वरों का प्रयोग केवल वैदिक ध्वनियों के उच्चारण में ही नहीं होता अपितु नित्य प्रति व्यवहार में आने वाली भाषा के शब्दों में भी किया जाता है। साहित्य शास्त्रियों ने इसे काकु कहा है, जैसे ये हमारे गुरु हैं। वाक्य में गुरु साधारण नीचे स्वर से बोले जाने पर केवल शिक्षक या उपदेशक का अर्थ देता है, किंतु ये बड़े गुरु हैं, इस वाक्य में जब गुरु शब्द को तनिक दीर्घ या प्लुत स्वर के साथ बोला जाएगा तो इसका अर्थ बड़े मक्कार, बड़े दुष्ट हो जाएगा। इस प्रकार ध्वनि उच्चारण में स्वर का अत्यंत महत्व होता है। घृणा, प्रेम, क्रोध, आश्चर्य, शोक, घबराहट, आवेश, निषेध आदि की अभिव्यक्ति के लिए प्रायः बोल चाल में स्वरों का अधिकाधिक प्रयोग किया जाता है। यही कारण है कि स्वर को भी ध्वनि का विशिष्ट गुण माना जाता है। तीसरा, आघात। जब किसी ध्वनि पर विशेष बल या जोर देकर उसका उच्चारण किया जाता है तब उसे आघात कहते हैं। अंग्रेजी में यह एक्सेंट कहलाता है और भाषा विज्ञान की शब्दावली में इसे स्वराघात या बलाघात कहते हैं। यह आघात या स्वराघात मुख्यतः तीन प्रकार का होता है, क संगीतात्मक स्वराघात, ख बलात्मक स्वराघात और ग रूपात्मक स्वराघात। क संगीतात्मक स्वराघात, संगीत या आरोह और अवरोह के समय जिस तरह स्वरों में उतार चढ़ाव देखा जाता है उसी तरह भाषा के शब्दों या वाक्यों अथवा पद्यात्मक पंक्तियों को उच्चारण में जो ध्वनिगत उतार चढ़ाव प्रतीत होता है उसी को संगीतात्मक स्वराघात कहते हैं। इस संगीतात्मक स्वराघात के लिए स्वरतंत्रियों में तनाव का उत्पन्न होना अत्यावश्यक होता है, क्योंकि स्वरतंत्रियों के शिथिल या ढीले हो जाने पर संगीतात्मक स्वराघात का उच्चारण होना सर्वथा असंभव है। अतः संगीतात्मक स्वराघात केवल घोष ध्वनियों में ही देखा जाता है, अघोष ध्वनियों में नहीं, क्योंकि अघोष ध्वनियों के उच्चारण में स्वरतंत्रियों के अंतर्गत तनिक भी तनाव उत्पन्न नहीं होता। वैसे भी संपूर्ण गेय काव्य में संगीतात्मक स्वराघात पाया जाता है, परंतु इसका सर्वाधिक प्रयोग वैदिक ऋचाओं में होता है, क्योंकि उन ऋचाओं का उच्चारण सस्वर किया जाता है और सस्वर उच्चारण में स्वरों का उतार चढ़ाव संगीत की पद्धति पर होता है। इसीलिए वहाँ उद्दात, अनुदात और स्वरित स्वरों के प्रयोग द्वारा संगीतात्मक स्वराघात को अत्यधिक मात्रा में अपनाया जाता है। प्राचीन ग्रीक भाषा में भी संगीतात्मक ध्वनियों का प्रयोग पर्याप्त मात्रा में होता था, और वहाँ पर भी वैदिक उद्दात, अनुदात और स्वरित शब्दों की तरह तीव्र, गंभीर और सम स्वर होते थे। वैदिक संस्कृत और ग्रीक की तरह हिंदी में संगीतात्मक स्वराघात नहीं पाया जाता। यहाँ कवित, सवैया, दोहा, चौपाई, आधुनिक प्रगीत, मुक्तक, कविता आदि में जो गीयता दृष्टिगोचर होती है, उसमें संगीतात्मक स्वराघात का प्रयोग न होकर प्रायः बलात्मक स्वराघात का ही प्रयोग होता है। संगीतात्मक स्वराघात का सर्वाधिक प्रयोग यहाँ वेद मंत्रों में ही होता रहा है। प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं के विकसित होते ही इसका लोप हो गया, और तब से अब तक भारतीय भाषाओं में संगीतात्मक स्वराघात का प्रायः अभाव सा ही चला आ रहा है। इतना अवश्य है कि कभी कभी बोलचाल के लिए प्रश्नवाचक वाक्य में संगीतात्मक स्वराघात अवश्य मिल जाता है, जैसे क्या तुम घर जाओगे, वाक्य में जाओगे का उच्चारण कुछ ऊंचे स्वर में होता है, अतः यहाँ संगीतात्मक स्वराघात देखा जा सकता है। ख, बलात्मक स्वराघात, जहाँ संगीतात्मक स्वराघात स्वरतंत्रियों के तनाव पर निर्भर करता है, वहाँ बलात्मक स्वराघात फेफड़ों पर निर्भर करता है। बलात्मक स्वराघात में किसी ध्वनि पर विशेष बल देकर उच्चारण किया जाता है, उस समय फेफड़ा तेजी के साथ नए श्वास वायु को बाहर फेंकता है और वह उच्चरित ध्वनि जोर से सुनाई पड़ती है। डॉक्टर तारापोरवाल का मत है कि ग्रीक भाषा में बलात्मक स्वराघात की प्रधानता है, क्योंकि ग्रीक भाषा का उच्चारण हथौड़े की चोट के समान होता है। लैटिन, वेल्श, अंग्रेजी, फारसी आदि भाषाओं में भी बलाघात स्वराघात की बहुलता दृष्टिगोचर होती है। इस बलात्मक स्वराघात के प्रयोग से प्रायः अर्थ में भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे ग्रीक भाषा में पेट्रोक्टोनोस शब्द को जब टो पर बलात्मक स्वराघात देकर पेट्रोक्टोनोस बोला जाता है, तब इसका अर्थ पिता को मारने वाला हो जाता है, और जब रो पर बलाघात स्वराघात देकर पेट्रोक्टोनोस उच्चारण किया जाता है, तब इसका अर्थ पिता द्वारा मारा गया हो जाता है। संस्कृत में जहाँ तहाँ बलात्मक स्वराघात का प्रयोग मिल जाता है, जैसे इंद्र शत्रु शब्द में यदि इंद्र पर बलात्मक स्वराघात देकर उच्चारण किया जाता है, तो इसका अर्थ इंद्र है शत्रु, जिसका अर्थ बहुव्रीहि समास हो जाता है, और यदि शत्रु पर बलाघात देकर उच्चारण किया जाता है, तो इसका उच्चारण इंद्र का शत्रु अर्थात तत्पुरुष समास हो जाता है। अंग्रेजी में यह बलात्मक स्वराघात पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, जहाँ कंडक्ट आदि में यदि आरंभ में बलात्मक स्वराघात होगा तो यह शब्द संज्ञा बन जाएगा, और यदि इसका उच्चारण करते समय डी पर बलात्मक स्वराघात होगा तो यह शब्द क्रिया हो जाएगा। हिंदी के मासिक तथा वर्णिक सभी छंदों में, मात्रिक तथा वर्णिक सभी छंदों में बलात्मक स्वराघात का ही प्रयोग किया जाता है। वहाँ स्वरों की संख्या का या मात्रा काल को आधार नहीं बनाया जाता। यदि वहाँ मात्रा काल या स्वरों की संख्या के अनुसार ही छंदों का निर्माण होता तो ह्रस्व स्वर सदा एक मात्रा वाला और दीर्घ स्वर सदैव दो मात्रा वाला ही होता, किंतु ऐसा नियम वहाँ नहीं देखा जाता है। हिंदी छंदों में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जिनमें कभी ह्रस्व स्वर दीर्घ हो जाता है और दीर्घ स्वर को ह्रस्व मानकर गणना की जाती है। अतः यहाँ बलात्मक स्वराघात का प्रयोग ही अधिक मात्रा में होता है। अवधि भाषा में भी बलात्मक स्वराघात अधिक पाया जाता है। हिंदी में प्रायः बलात्मक स्वराघात उपांत अक्षर द्वारा हुआ करता है, जैसे किसान, दाल, कमल, राम आदि। ग, रूपात्मक स्वराघात, प्रायः यह देखा जाता है कि दो व्यक्ति कभी किसी ध्वनि का एक सा उच्चारण नहीं करते, उनके बोलने में बहुधा अंतर देखा जाता है। इस अंतर का मूल कारण रूपात्मक स्वराघात होता है, क्योंकि जिस प्रकार दो व्यक्तियों की आकृति पूर्णतया नहीं मिलती, उसी तरह दो व्यक्तियों के उच्चारण या बोलने में भी अर्थन अंतर अवश्यमेव रहता है। जब किसी स्थान पर बैठे हुए दो व्यक्ति बातें करते हैं तो उनको बिना देखे ही उनसे परिचित तीसरा व्यक्ति उनकी बोली को सुनकर तुरंत यह पहचान लेता है कि अमुक अमुक व्यक्ति बातें कर रहे हैं। प्रायः रूपात्मक स्वराघात का संबंध प्रत्येक व्यक्ति के स्वर तंत्रियों की बनावट से होता है और सभी व्यक्तियों के स्वर तंत्रियों की बनावट एक सी नहीं होती। तभी तो किसी का स्वर मोटा, किसी का पतला, किसी का महीन, किसी का मधुर और किसी का फटे बांस जैसा होता है। इस स्वराघात का संबंध भाषा से न होकर प्रायः बोलने वाले से होता है, क्योंकि वह मुख्यतया व्यक्ति की आवाज़ पर निर्भर करता है। अतः इसका अध्ययन केवल काइमोग्राफ के चित्रों द्वारा हो सकता है। चौथा, वृत्ति। वृत्ति का तात्पर्य है उच्चारण की गति या स्पीड। जिस तरह ध्वनि के उच्चारण में मात्रा, स्वर और आघात का महत्व होता है, उसी तरह वृत्ति भी पर्याप्त महत्वपूर्ण होती है। वृत्ति के तीन भेद होते हैं, द्रुत, मध्यम और विलंबित। क, द्रुत। उच्चारण के तीव्र गति को द्रुत कहते हैं। प्रायः यह देखा जाता है कि कुछ व्यक्ति बड़ी जल्दी जल्दी बोला करते हैं, अर्थात उनके बोलने की गति बड़ी तीव्र होती है। वे इतनी जल्दी शब्दों, वाक्यों आदि का उच्चारण किया करते हैं कि कभी कभी श्रोता को यह तक ज्ञात नहीं होता कि वे क्या कह रहे हैं और उनका क्या अभिप्राय है। अतः तीव्र गतियुक्त उच्चारण अर्थबोध में बाधक होता है। हाँ, इतना अवश्य है कि अभ्यास के लिए द्रुत वृत्ति अथवा तीव्र गति की अपेक्षित होती है। बहुत से भक्तजन या धार्मिक व्यक्ति नित्य प्रति मंत्रों का उच्चारण या हनुमान चालीसा का पाठ किया करते हैं। उनके लिए तीव्र गति ही सहायक होती है और उन्हें अर्थबोध में कठिनाई नहीं होती, परंतु जनसाधारण के सम्मुख वक्तृत्ता देने या किसी से वार्तालाप करने में द्रुत वृत्ति का प्रयोग दूषित माना जाता है, क्योंकि उससे किसी को कुछ ज्ञात नहीं होता कि वक्ता क्या कह रहा है और उसका अभिप्राय क्या है। ख, मध्यम। उच्चारण की न तो अधिक तीव्र और न अधिक मंद गति को मध्यम वृत्ति कहते हैं। यह वृत्ति परस्पर वार्तालाप के लिए अत्यंत उपयोगी होती है, क्योंकि इसको अपनाकर जो व्यक्ति शब्दों का उच्चारण करते हैं वे अपनी बात बड़ी सरलता एवं सुगमता के साथ दूसरों के सम्मुख व्यक्त करते हैं और दूसरे व्यक्ति भी अपने अपने विचार एवं अपने अपने प्रक्रियाओं को उसके सम्मुख आसानी से अभिव्यक्त कर सकते हैं। तीव्र गति से उच्चारण करने वालों की बात ही जब समझ में नहीं आएगी तो दूसरा व्यक्ति अपने विचार एवं अपनी प्रतिक्रिया कैसे व्यक्त कर पाएगा। परंतु मध्यम गति से उच्चारण करने वाले व्यक्ति की हर बात दूसरे व्यक्ति की समझ में सरलता से आ जाती है और वह अपने विचार एवं अपनी प्रतिक्रिया भी सुगमता से अभिव्यक्त कर सकता है। यही कारण है कि पारस्परिक वार्तालाप एवं विचार विनिमय के लिए मध्यम वृत्ति का ही सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। इसमें जहाँ वक्ता अपने विचार दूसरे व्यक्ति के सम्मुख व्यक्त करके अपनी बात समाप्त करता है, वहीं दूसरा व्यक्ति तुरंत उन विचारों पर अपनी प्रतिक्रिया सुगमता से व्यक्त कर सकता है और अधिक व्यक्ति भी अपनी बात या अपने विचार एक दूसरे के सम्मुख प्रकट कर सकते हैं। अतः बोधगम्य उच्चारण की दृष्टि से तथा पारस्परिक विचार विनिमय की दृष्टि से मध्यम वृत्ति सर्वथा उपयुक्त होती है। ग, विलंबित। उच्चारण के मंद गति को विलंबित वृत्ति कहते हैं। इस वृत्ति को अपनाकर वक्ता अपने एक एक शब्द को अत्यंत धीरे धीरे समझा समझा कर और सोच सोच कर दूसरों के सम्मुख व्यक्त किया करता है। साथ ही वह अपने विचारों को दूसरों के हृदय तक पहुंचाने के लिए अथवा उन्हें अधिक से अधिक बोधगम्य बनाने के लिए इस विलंबित वृत्ति का प्रयोग करता है। अतः यह विलंबित वृत्ति उपदेशकों, शिक्षकों, प्रवचनकर्ताओं आदि के लिए अत्यंत उपयोगी होती है, क्योंकि उपदेशक जब तक धीरे धीरे मंद गति से अपने उपदेशकों को भक्तजनों के सम्मुख प्रकट नहीं करेगा तब तक न तो उसके उपदेश किसी के समझ में आएंगे न उनके अनुकूल आचरण करने के लिए कोई तैयार होगा। अतः उपदेशों को अधिक से अधिक उपयोगी एवं सर्वजन ग्राह्य बनाने के लिए विलंबित वृत्ति का प्रयोग अत्यंत लाभप्रद होता है। इसी तरह शिक्षक या अध्यापक वे ही सफल माने जाते हैं जो अपने विषय का प्रतिपादन एवं स्पष्ट सरल शैली में मंद मंद गति से अपने विद्यार्थियों के सम्मुख किया करते हैं। इससे एक ओर तो कठिन से कठिन विषय भी विद्यार्थियों के समझ में आसानी से आ जाते हैं, दूसरे मंद मंद गति से उच्चारित प्रत्येक शब्द एवं प्रत्येक वाक्य छात्रों के हृदय एवं बुद्धि पर अपने स्थायी छाप अंकित कर देता है। ऐसे ही प्रवचनों के अंतर्गत यदि प्रवचन मंद मंद गति से धीरे धीरे श्रोताओं को सम्मुख किया जाता है तो अपनी गंभीरता एवं गहनता के कारण क्लिष्ट से क्लिष्ट विषय भी बोधगम्य हो जाता है और यह सभी श्रोता उस प्रवचन से लाभान्वित होते हैं। इस दृष्टि से भाव संप्रेषणीयता अथवा विचारों के संप्रेषण के लिए विलंबित वृत्ति अधिकाधिक उपयोगी होती है और अध्यापन कार्य के लिए तो यह वृत्ति सबसे अधिक प्रशंसनीय मानी गई है। सारांश यह है कि उच्चारण प्रक्रिया का समुचित ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्वनियों के गुणों का ज्ञान अत्यंत आवश्यक होता है। भाषा का ठीक ठीक व्यवहार वही व्यक्ति कर सकता है जो ध्वनि गुणों से परिचित हो, अर्थात यह जानता हो कि मात्रा किसे कहते हैं, स्वर क्या है, आघात कहाँ और कब प्रयुक्त होता है, तथा अभ्यास, वार्तालाप या उपदेश देते समय कौन से वृत्ति का उपयोग करना चाहिए। अनुचित ध्वनि प्रयोग अथवा अशुद्ध शब्द प्रयोग न केवल अपने लिए अहितकर होता है अपितु दूसरों के लिए भी कष्टप्रद होता है। अतएव ध्वनियों के गुणों को भली भांति जानकर उनके अनुसार ध्वनियों का उच्चारण व व्यवहार करना भाषा के लिए भी सर्वथा उपयोगी होता है। इसी कारण ध्वनियों की सम्यक जानकारी के लिए ध्वनि गुणों का जानना भी अत्यंत अपेक्षित होता है। श्रुति प्रायः ध्वनियों का उच्चारण करते समय वाग्य यंत्र के उच्चारण उपयोगी अवयवों को एक विशेष प्रकार का प्रयत्न करना पड़ता है। इस प्रयत्न के समय एक ध्वनि का उच्चारण करके तुरंत जब दूसरी ध्वनि का उच्चारण किया जाता है तब अवयव विशेष को दूसरे स्थान पर आना पड़ता है और एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच जो थोड़ा बहुत अंतराल रह जाता है वहाँ से कुछ परिवर्तन ध्वनियाँ निकला करती हैं। इन्हें परिवर्तन ध्वनियों को श्रुति कहते हैं। यह दो प्रकार की होती है, पूर्वश्रुति और परश्रुति। पूर्वश्रुति उस परिवर्तन ध्वनि को पूर्वश्रुति कहते हैं जो किसी स्वर या व्यंजन के पहले सुनाई पड़ते, जैसे स्कूल, स्त्री, स्नान, स्टूल, स्टेशन आदि शब्दों का उच्चारण क्रमशः स्कूल, स्त्री, स्नान, स्टूल, स्टेशन जैसा सुनाई पड़ता है। अतः स्कूल के पूर्व ई, स्नान के पूर्व अ, स्टूल के पूर्व ई पूर्वश्रुति है। इस पूर्वश्रुति के कारण बहुत से शब्दों के उच्चारण ही बदल जाते हैं, जैसे स्टेशन को अटेशन, उल्लास को हुलास आदि पूर्वश्रुति के कारण ही बोलते हुए सुना जाता है। आ परश्रुति यह परिवर्तन ध्वनि परश्रुति कहलाती है जो किसी स्वर या व्यंजन के पश्चात सुनाई पड़ती है। इस परश्रुति के कारण अनेक संयुक्त व्यंजन असंयुक्त हो जाते हैं, जैसे इंद्र का इंदर, प्रकाश का प्रकाश, प्रसाद का प्रसाद, ब्राह्मण का ब्राह्मण आदि परश्रुति के कारण हो जाता है। इसी परश्रुति के कारण पृथ्वी का पृथ्वी उच्चारण मिलता है तथा स्वर्ण को सुवर्ण बोला जाता है। इस प्रकार ध्वनियों के उच्चारण में पूर्व श्रुति और परश्रुति को स्पष्ट सुना जा सकता है। इनके कारण शब्दों के विचित्र रूप हो जाते हैं। कभी कभी तो ये श्रुतियाँ इतनी प्रधान हो जाती हैं कि वे निश्चित ध्वनि का आकार ग्रहण कर लेती हैं और भाषाओं में अपना स्थान बना लेती हैं। यद्यपि पहले तो इन श्रुतियों का उच्चारण अत्यंत अल्प प्रयत्न के द्वारा होता था, तथापि धीरे धीरे अपना प्रभाव बढ़ाती हुई चौथाई या आधे वर्ण के समान प्रयुक्त होने लगती है। यही कारण है कि ध्वनि के विकास में श्रुति का भी अत्यंत महत्व है। ध्वनि विकार की दशाएं। भाषा विज्ञान के अंतर्गत ध्वनि विकार को ध्वनि परिवर्तन या ध्वनि विकास भी कहते हैं, क्योंकि कभी तो प्रचलित ध्वनियाँ पूर्णतया परिवर्तित हो जाती हैं और कभी वे विकृत होकर नया रूप ग्रहण कर लेती हैं। कभी प्रचलित शब्दों में से कुछ ध्वनियों का लूप हो जाता है तो कभी एक ध्वनि दूसरी ध्वनि को प्रभावित करके अपने समान बना लेती है और कभी एक ध्वनि को देखकर दूसरी समध्वनि विषम हो जाती है। इतना ही नहीं, कभी कभी किसी शब्द की अल्पप्राण ध्वनि महाप्राण हो जाती है और महाप्राण ध्वनि अल्पप्राण हो जाती है। कभी कोई ह्रस्व ध्वनि दीर्घ हो जाती है और दीर्घ ध्वनि ह्रस्व हो जाती है। कभी कोई ध्वनि अनुनासिक हो जाती है तो कभी अनुनासिक ध्वनि साधारण रूप ग्रहण कर लेती है। साथ ही कोई ध्वनि ठीक ठीक उच्चारण के अभाव में पूर्णतया नवीन ढंग से बोली जाने लगती है। इस प्रकार ध्वनियों में विविध प्रकार के विकार उत्पन्न होते रहते हैं जिनके फलस्वरूप ध्वनियों में विविध प्रकार के परिवर्तन देखे जाते हैं। अतः ध्वनियों के विकृत होने पर उनमें जो विविध प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं उनको ही ध्वनि विकास कहते हैं। यह ध्वनि विकास किन किन दिशाओं में होता रहता है यह इस प्रश्न के बारे में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद मिलता है। संस्कृत के विद्वानों ने ध्वनि विकास की केवल चार दिशाएँ बतलाई है, वर्णागम, वर्ण विपर्य, वर्ण विकार और वर्णनाश अर्थात या वर्णलोप। परंतु आधुनिक भाषा वैज्ञानिकों ने ध्वनि परिवर्तन की विविध दिशाओं की ओर संकेत किए हैं, जिनमें से 17 दिशाएं प्रमुख हैं। पहला आगम, दूसरा लोप, तीसरा विपर्य, चौथा मात्राभेद, पांचवा समीकरण, छठा विषमीकरण, सातवां सघोषीकरण, आठवां अघोषीकरण, नवा अल्प प्राणीकरण, दसवां महाप्राणीकरण, ग्यारहवां उष्मीकरण, बारहवा अनुनासीकरण, तेरहवा संधिकरण, चौदहवा अवश्रुई अक्षरावसान, पंद्रहवा अभिश्रुति या अक्षर परिवर्तन, सोलहवा अपिनिहित या स्वरागम, सत्रहवा भ्रामक व्युत्पत्ति।